स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है, कल्प साधना का स्वरूप। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कल्प साधना आखिर है क्या चीज। कई लोग सोचते हैं ये कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि मिल जाएगी, पर क्या सच में ऐसा है? गुरुदेव तो कहते हैं कल्प का मतलब ही ये बदलाव, परिवर्तन। और ये साधना बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ से कहीं ज्यादा हमारे अंदर के नजरिए, हमारी सोच, स्वभाव, इनको बदलने पर है। क्यों?
बिल्कुल सही कहा। पूज्य गुरुदेव ना शुरू में ही ये बात साफ कर देते हैं कि कल्प साधना सिर्फ कुछ क्रियाएं कर लेना नहीं है। जैसे मान लीजिए जप कर लिया, ध्यान कर लिया या खाने पीने में कुछ बदलाव कर लिया। इनका असली मकसद तो है व्यक्ति के अंदर उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका चरित्र, स्वभाव, यहाँ तक कि उसकी पसंद नापसंद इच्छाएं, सब बदलना।
अच्छा।
और वो एक चेतावनी भी देते हैं जो बहुत जरूरी है कि भाई बिना अपनी मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, सिर्फ ये सोचना कि कोई आशीर्वाद मिल जाएगा या कोई मंत्र फूंक देगा और सब बदल जाएगा, ये बेकार की बात है। साधक को खुद लगना पड़ेगा।
हाँ, ये बात तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, पुरुषार्थ, अपनी कोशिश। इसी को समझाने के लिए उन्होंने महामना मालवी जी के कायाकल्प का उदाहरण भी दिया है ना?
हाँ बिल्कुल, वो बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। हालांकि गुरुदेव का जोर शारीरिक कायाकल्प पर उतना नहीं है जितना मानसिक पर प्रक्रिया समझाने के लिए ये बढ़िया है।
तो क्या हुआ था मालवी जी के साथ और ये मानसिक बदलाव से कैसे जुड़ता है, जरा बताएं।
हाँ, तो मालवी जी का कायाकल्प मथुरा के पास कोई तपसी बाबा थे, उन्होंने कराया था। इसमें मोटे तौर पर तीन चरण थे और यही तीन चरण मानसिक कायाकल्प के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। पहला था पंचकर्म, मतलब शरीर का शोधन, सफाई। इसमें जैसे दस्त लगवाए, उल्टी कराई, पसीना निकलवाया, नाक साफ की, ताकि शरीर में जो भी गंदगी, विष जमा है वो निकल जाए। अब मानसिक कायाकल्प में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने अंदर जो मानसिक गंदगी जमा है, जैसे पुरानी बुरी आदतें, हमारे कुसंस्कार या मन में बैठे भ्रम, गलत धारणाएं जिन्हें आवरण कहा है, या फिर मन का फालतू में इधर उधर भटकना जिसे विक्षेप कहते हैं, और गुस्सा, जलन, लालच जैसी गहरी नकारात्मक भावनाएं, मतलब कषाय कलमश, इन सबको पहले पहचानना और फिर इनसे लड़ना, जूझना, इन्हें बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना।
बाप रे।
इसी को गुरुदेव ने प्रायश्चित भी कहा है कि पुराने गलत कामों के जो असर हैं उनको मिटाना। जैसे रंगाई करने से पहले कपड़े की मैल धोना जरूरी है ना, वैसे।
अच्छा।
तो पहला कदम हुआ अंदर की धुलाई, मन की सफाई, परिशोधन। ये तो सुनने में ही काफी मेहनत का काम लगता है। इसके बाद क्या मालवी जी के साथ अगला कदम क्या था?
इसके बाद दूसरा कदम था एकांत सेवन। मालवी जी को पूरे 40 दिन एक बंद झोपड़ी में अकेले रहना पड़ा, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटकर।
40 दिन अकेले? हाँ, और मानसिक कायाकल्प के लिए भी ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि साधक को भी कुछ वक्त, मान लीजिए एक महीना, ऐसे ही एकांत में रहना चाहिए। उस कमरे को माँ का गर्भ समझो जहाँ नया जीवन बन रहा है, या कुम्हार का आवा जहाँ कच्चा बर्तन पककर मजबूत होता है। इस समय में बाहर की दुनिया, घर परिवार, काम धंधा, इन सब चिंताओं से मन हटाना है और पूरा ध्यान लगाना है अपने अंदर। आत्मचिंतन करना है, अपनी कमियां, अपनी ताकतें, अपनी मुश्किलें, आगे क्या करना है, इस सब पर सोचना है। मन को, शरीर को भटकने से रोकना है।
तो पहले सफाई, फिर एकांत में आत्मचिंतन, और फिर जब मन साफ हो गया, दिशा भी शायद कुछ कुछ दिखने लगी, तो अब ताकत कहाँ से आएगी? तीसरा कदम क्या था?
बिल्कुल सही सवाल। तीसरा और आखिरी कदम है टॉनिक सेवन। जैसे मालवी जी को शरीर की ताकत के लिए गिलोय वगैरह दी गई कोई खास औषधि, वैसे ही मानसिक कायाकल्प के लिए टॉनिक क्या है? वो है अच्छे, ऊंचे, सकारात्मक और शक्तिशाली विचार, उनका सेवन करना। जिन बढ़िया विचारों की अब तक जिंदगी में कमी थी उन्हें अपनाना।
अच्छा, विचारों का टॉनिक।
हाँ, जैसे गलत खाने पीने से शरीर बिगड़ता है ना, कुपोषण हो जाता है, वैसे ही गलत गिरे हुए नकारात्मक विचारों से हमारा मन बीमार होता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है भगवान से जुड़ना। अब भगवान मतलब कोई मूर्ति या तस्वीर ही नहीं, भगवान मतलब अच्छाई, सद्गुण, आदर्श, उनका ध्यान करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना जो हमारी सबसे ऊंची चेतना है, और जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा, देवता, उनके जीवन, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेना। जो नकारात्मक लोग हैं, घटिया माहौल है, उनसे दूर हटना और ऊंची प्रेरणाओं को, नए नजरिए को, पवित्र आदर्शों को अपनाना।
और ये होगा कैसे? मतलब विचारों का टॉनिक पियेंगे कैसे?
इसके तरीके भी गुरुदेव ने बताए हैं। स्वाध्याय यानी अच्छी किताबें पढ़ना, संतों के विचार पढ़ना, चिंतन मनन, जो पढ़ा सुना उस पर सोचना विचारना, जप, ध्यान, योगाभ्यास और तप। तप मतलब थोड़ी साधना, थोड़ा अनुशासन। इनके जरिए ये मानसिक टॉनिक मिलता है।
समझ गया। तो ये तीन कदम हो गए, परिशोधन यानी सफाई, एकांत सेवन यानी आत्मचिंतन और टॉनिक सेवन यानी सकारात्मक विचारों से पोषण। ये तो वाकई एक पूरी प्रक्रिया है खुद को बदलने की।
पर गुरुदेव ने व्यक्तिगत प्रयास, पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया।
हाँ बिल्कुल।
तो क्या इसमें किसी बाहरी मदद, किसी सहारे की कोई जगह नहीं है? सब कुछ खुद ही करना है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पुरुषार्थ तो सबसे पहले है, अपनी कोशिश। गुरुदेव कहते ना, पंख तो आपके ही उड़ाने हैं
जी,
वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये भरोसा भी दिलाते हैं कि जो ईमानदारी से कोशिश करता है ना, उसे मदद भी मिलती है, सहारा भी मिलता है।
कैसा सहारा?
तीन तरह का। माँ जैसा प्यार और पोषण, पिता जैसा अनुशासन और सहयोग, और गुरु जैसा मार्गदर्शन। वो शांति कुंज के माहौल को, वहाँ की शक्ति को इसी गुरु तत्व का प्रतीक बताते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि साधक बड़ा भाग्यवान है जिसे ये तीनों तरह का सहारा मिल रहा है। लेकिन इस सहारे का फायदा तभी होगा जब साधक खुद भी हाथ पैर हिलाएगा।
जैसे वो कहते हैं ना कि पिंजड़े की तीलियां अगर काट भी दी जाए तो उड़ने के लिए पंखों को तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना। वो काम तो खुद ही करना होगा।
बिल्कुल सही। तो सार यही निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से कल्प साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो खुद को बदलने की एक गहरी, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पुराने बेकार खोल को उतार फेंकते हैं जैसे केंचुल, और अपनी जो बेहतरीन संभावनाएं हैं उनको जगाते हैं। और इसके लिए ये तीन कदम बहुत जरूरी हैं। पहले मन की सफाई, फिर एकांत में खुद को जानना, और फिर लगातार अच्छे विचारों से खुद को सींचना।
बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। ये अपने अतीत की सफाई करके, एकांत में बैठकर भविष्य का एक नक्शा बनाकर और लगातार रोज सकारात्मक मानसिक टॉनिक लेकर खुद को नया बनाने की साधना है। इसमें अपनी मेहनत भी है और ऊपर वाले की मदद भी, दोनों का मेल है ये।
और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए गुरुदेव के ही शब्दों में एक सवाल छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं, आप पंखों को पहना कीजिए, तीलियां हम काट देते हैं। तो आज अपने जीवन में जरा सोचिए, वो कौन से पंख हैं, कौन सी हमारी क्षमताएं हैं, आदतें हैं या गुण हैं जिन्हें पैना करने की, मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जब जिंदगी मौका दे, जब वो तीलियां कटें, तो हम सचमुच एक ऊंची उड़ान भर सकें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।